नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a richly diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।